खंड दो, पृष्ठ संख्या 125, अध्याय दो, तबले के विभिन्न बाज और घराने। पिछले अध्याय में हम तबले की उत्पत्ति की विविध संभावनाओं पर समुचित विचार कर चुके हैं। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व भारत की ऐतिहासिक नगरी दिल्ली में बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के काल में सन 1700 ईस्वी लगभग उस्ताद सिद्धारखा डाढ़ी नामक एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ने उन दिनों के अभिजात संगीत में प्रवेश कर चुकने वाले एक प्राचीन तालवाद्य में कुछ परिवर्तन किए। पखावज एवं समकालीन प्रचलित अवनद्यवादियों की वादन शैली बोल बंदिशों का आधार लेकर उस तालवाद्य पर नवीन बोल बंदिशों की रचना की। आज वह वाद्य तबले से तबला बन चुका है, क्योंकि उस्ताद सिद्धारखा दिल्ली के निवासी थे, अतः तबले में उनका घराना दिल्ली घराना और बाज दिल्ली बाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तबले के विविध बाजों एवं घरानों के इतिहास और परंपरा का विस्तृत वर्णन करने के पूर्व बाज शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है। संक्षेप में वादन प्रणाली एवं वादन शैली को बाज कहते हैं। तबले के प्रचलित बाजों को हम मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पश्चिम बाज, जिसके अंतर्गत दिल्ली और अजराने घरानों की वादन शैली आती है। दूसरा पूरब बाज, इसके अंतर्गत लखनऊ फरुखाबाद और बनारस घरानों की वादन शैली आती है। पंजाब घराने की वादन शैली इन सभी से पृथक है, जिस पर मृदंग की शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है। बंद बाज, इसमें मर्यादित ध्वनि उत्पन्न होती है। इस बाज में चाटी अर्थात किनार का अधिक प्रयोग होता है, अतः इसे किनार का बाज भी कहते हैं। इस बाज में दो अंगुलियों का अधिक प्रयोग होता है। दिल्ली और अजराना घराने की वादन शैली बंद बाज है। खुला बाज, इस बाज में ध्वनि गूंज युक्त एवं प्रबल होती है। यह बाज पखावज की वादन शैली के अधिक निकट है। इसमें अंगुलियों के साथ साथ पूरे पंजे का प्रयोग भी प्रचलित है, अतः धीर धीर बोल का विशेष चलन है और थाप का भी प्रयोग होता है। इसका प्रचलन लखनऊ फरुखाबाद तथा बनारस घराने में है। देश के पूर्वी भाग में होने के कारण इसे पूर्वी बाज भी कहते हैं। तबले के विविध घराने। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि दिल्ली घराना और बाज अन्य सभी घरानों का जनक है। दिल्ली के शिष्य देश के विभिन्न नगरों में फैल गए और अस्थायी रूप से बस गए। उन लोगों ने अपने वादन में स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार संशोधन किए तथा अपनी निजी प्रतिभा एवं सृजन शक्ति के आधार पर परिवर्तन करके अपने बाज को नया जामा पहनाया और अपनी अलग पहचान बना ली। जब उस नवनिर्मित शैली का अनुसरण उनके वंश एवं शिष्यों द्वारा कई पीढ़ियों तक चलता गया तो कालांतर में उसे एक घराने की मान्यता मिली। इस प्रकार आज उत्तर भारतीय संगीत में तबले के मुख्य 6 घराने प्रसिद्ध हैं। पृष्ठ संख्या 126। पहला दिल्ली घराना, दूसरा अजराना घराना, तीसरा लखनऊ घराना, चौथा फरुखाबाद घराना, पांचवा बनारस घराना, छठवां पंजाब घराना। उपर्युक्त घरानों के अतिरिक्त देश में तबले की अनेक परंपराएं भी प्रचलित हैं, जैसे इंदौर, विष्णुपुर, ढाका, जयपुर, हैदराबाद, मुरादाबाद, भटौला आदि की परंपराएं। रामपुर, रायगढ़, ग्वालियर जैसे राज दरबारों में फैली परंपराएं और कुछ नर्तकों एवं पखावजियों से संबंधित परंपराएं। पहले हम विभिन्न घरानों के उद्गम एवं विकास के विषय में चर्चा करेंगे। दिल्ली घराने के आदि प्रवर्तक उस्ताद सिद्धार खां डाढ़ी, उनके अनुज चांद खां, पुत्र बुगरा खां, घसीट खां एक अज्ञात नाम के पुत्र तथा वंश एवं शिष्यों की लंबी सुदृढ़ परंपरा ने दिल्ली घराने की नींव दृढ़ की है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक मेरठ जनपद है, उसमें एक गांव का नाम अजराणा है। वहां के मूल निवासी दो भाई मीरू खां और कल्लू खां तबले के की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली गए और वे उस्ताद सिद्धार्थ खां के पौत्र सिताब खां के शिष्य बन गए। पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद वे दोनों भाई अपने गांव वापस चले गए। वहां उन लोगों ने अपनी वादन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन करके दिल्ली के बाज को एक नया चोला पहना दिया। फिर उनकी शिष्य परंपरा ने उस परिपाटी को आगे बढ़ाया और इस प्रकार से अजराणा नामक एक नवीन घराने का को मान्यता मिल गई। उस्ताद सिद्धार्थ खां के दो पौत्र मौदू खां और बक्सू खां को अवध के नवाब असमत जंग बहादुर ने लखनऊ बुला लिया। इन बंधु द्वय ने अपनी वादन शैली में यथेष्ट परिवर्तन करके एक मौलिक बाज का विकास किया। इसी से उनके घराने को एक पृथक घराने की मान्यता मिली जो लखनऊ घराने के नाम से विख्यात हैं। देश के पूर्वी भाग में तबले के प्रचार और प्रसार का श्रेय राम सहाय को प्राप्त है। उन्होंने लखनऊ घराने के प्रवर्तक उस्ताद मौदू खां साहब की शिष्यता में रहकर तबला वादन में प्रवीणता प्राप्त की। एक लंबी अवधि के पश्चात वे अपने नगर बनारस लौट आए और तबले का यथेष्ट प्रचार किया। उनकी शिष्य परंपरा से एक घराने का जन्म हुआ जो आज देश में बनारस घराने के नाम से सुविख्यात है। लखनऊ घराने के प्रवर्तक उस्ताद बक्सू खां के शिष्य एवं दामाद उस्ताद हाजी विलायत अली खां फरुखाबाद के रहने वाले थे। अपने ससुर से तालीम प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने फरुखाबाद जाकर अपनी नई परंपरा आरंभ की जो फरुखाबाद घराने के नाम से प्रसिद्ध हुई। तबले का एक बहुचर्चित घराना पंजाब घराना है। अभी तक हमने जितने घरानों की चर्चा की सभी का सीधा संबंध दिल्ली से है, परंतु यही एक ऐसा घराना है जिसका दिल्ली के घराने से कोई संबंध स्थापित नहीं होता। यह घराना एक स्वतंत्र घराना है और उसके प्रवर्तक मृदंग वादक लाला भवानी दास थे। यही कारण है कि पंजाब घराने की वादन शैली मृदंग शैली के अधिक निकट है। पृष्ठ संख्या 127। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, तबले में बहुत सारी परंपराएं व्याप्त हैं। उन सभी का संबंध कहीं न कहीं से दिल्ली से है, जिनकी विस्तृत चर्चा हम उन परंपरा वाले अध्यायों में करेंगे। तबले के घरानों की संख्या, विभिन्न विचार। देश के कुछ वयोवृद्ध एवं प्रसिद्ध कलाकारों से विचार विमर्श करने पर ज्ञात हुआ कि वे तबले के उपर्युक्त 6 घरानों के स्थान पर केवल 4 ही घराने स्वीकार करते हैं। वे पंजाब और बनारस के घरानों को पृथक घरानों के रूप में नहीं स्वीकारते। उनका तर्क है कि पंजाब घराना मूलतः पखावज घराना है और वहां तबले का प्रचार अधिक पुराना नहीं है। इसी प्रकार से बनारस के विषय में उनकी मान्यता है कि उस घराने में ऐसी विशेष रचनाओं का सृजन नहीं हुआ है जिससे उसको एक स्वतंत्र घराने की प्रतिष्ठा दी जा सके। फिर भी यह स्वीकारना ही होगा कि बनारस ने देश को बहुत सारे श्रेष्ठ तबला वादक दिए हैं। बनारस वालों ने कठिन साधना करके वादन में चमत्कार पैदा कर दिया है। वैसे पंजाब घराने के पोषक पंजाब घराने के को तबले का आदि घराना और दिल्ली से भी पूर्व का मानते हैं, जबकि बनारस घराने के पोषक गत फरद बोल बाट और लकी लड़ी के काम में बनारस को अद्वितीय बताते हुए घराने की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं। इस प्रकार अनेकानेक विचारधाराएं देश भर में व्याप्त हैं, किंतु अधिकतर विद्वान एवं तबला वादक पंजाब और बनारस सहित तबले के 6 घराने को स्वीकार करते हैं। बाज और घराने। तबले पर बजने वाले वर्ण अक्षर, पटाक्षर या अल्फाबेट कहलाते हैं। वे सभी घरानों एवं बाजों में एक समान ही होते हैं। सभी घरानों में धा को धा और धिन को धिन ही कहते हैं, परंतु विभिन्न घरानों में उनके निकालने की विधि में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। प्रत्येक घराने में कुछ विशेष प्रकार की मौलिक रचनाएं भी हुई और घराने के कर्णधार विद्वानों ने बंदिशों के निकालने की विधि साउंड प्रोडक्शन में परिवर्तन किए। इसी से विभिन्न घराने अलग अलग अस्तित्व में आए और उनकी पहचान बने। तबले पर बजने वाली रचनाएं पेशकारा, कायदा, परन, गत आदि हैं, परंतु उन सभी का महत्व विभिन्न घरानों में भिन्न भिन्न है। जैसे दिल्ली घराने में पेशकार, कायदे और रेले जैसी विस्तारशील रचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, तो फरुखाबाद में रौ, गत और चाला या चलन को, बनारस घराने में छंद, परन जैसी अविस्तारशील रचनाओं को, तो पंजाब घराने में रेला, लयकारी और बोल बांट को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक घराने के अपने नियम हैं। उन्हीं की सीमा में बद्ध होकर भारतीय संगीत में विविध घराने अस्तित्व में आए, जो अपनी निजी विशेषताओं के कारण एक दूसरे से पृथक हो सके। पृष्ठ संख्या 128, तालिका संख्या 16, तबले के प्रमुख 6 घरानों का उद्गम। दिल्ली घराना, इनके प्रवर्तक उस्ताद सिद्धार्थ खां डाढ़ी हुए। इनके 2 पुत्र उस्ताद बुगरा खां और दूसरा जिसका नाम अज्ञात है, उस्ताद बुगरा खां के पुत्र उस्ताद सिताब खां एवं सिताब खां के 2 शिष्य हुए उस्ताद मीरू खां और उस्ताद कल्लू खां, और इन दोनों ने अजराणा घराने को बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अज्ञात है, जिनके 2 पुत्र हुए उस्ताद मोदू खां और उस्ताद बक्सू खां। उस्ताद मोदू खां और बक्सू खां लखनऊ घराने के प्रवर्तक हैं। उस्ताद मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय जी हैं, जिन्होंने बनारस घराने को बनाया, एवं उस्ताद बक्सू खां के पुत्र उस्ताद हाजी विलायत अली खां या शिष्य और दामाद भी कुछ लोग कहते हैं, जिन्होंने फरुखाबाद घराने की को बनाया। 6वां पंजाब घराना। पंजाब घराना स्वतंत्र घराना है। उस्ताद सिद्धार्थ खां डाढ़ी के समकालीन लाला भवानी दास या भवानी सिंह पंजाब घराने के संस्थापक हैं। तबले के विभिन्न बाज। हमने बाज के विषय में पहले ही विचार कर लिया है। प्रायः तबला विषय के जिज्ञासुओं के बीच बाज और घरानों के विषय की चर्चा में कुछ भ्रांति देखने को मिलती है। बाज और घरानों का आपस में क्या संबंध है और वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। बाज और घराने एक दूसरे से पृथक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार शरबत में पानी और चीनी है। तबले के विभिन्न घरानों को मान्यता का एकमात्र आधार उनकी भिन्न वादन शैली है। यह भिन्नता 2 प्रकार से बतलाई जा सकती है, एक रचनाओं के से और दूसरे बोलों की निकास विधि से। तबले के वर्ण सभी घरानों के लिए एक है, उसी प्रकार से जैसे वर्णमाला के आधार पर भिन्न भिन्न विषय लिखे जाते हैं, तबले में एक ही बोल विभिन्न घरानों में कुछ अंतर के साथ बजाए जाते हैं। उदाहरण के लिए धा के लिए के निकास को देखिए। दिल्ली अजराणा में वह किनार पर, तो लखनऊ में लव पर, तो बनारस में और खुला करके बजाया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न घरानों में बोल बंदिशों में भी अंतर है और उसी से उनकी पहचान स्पष्ट होती है। जैसे पश्चिम के बाज में कायदा, पेशकारा, रेले और छोटे छोटे मुखड़े मोहरों की प्रधानता रही है। उसके विपरीत फरुखाबाद में चालें और गतों को महत्व दिया जाता है, तो पंजाब और बनारस बाज में बोलबाट, लगी लड़ी एवं छंदों का बाहुल्य रहता है। इस विशेष विश्लेषण से तबले के विभिन्न बाजों का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक युग में घरानों की सार्थकता। उत्तर भारतीय संगीत में पृष्ठ संख्या 129। उत्तर भारतीय संगीत में कुछ एक दशकों पूर्व तक घरानों को विशेष मान्यता प्राप्त थी, परंतु आज के प्रगतिशील युग में परिस्थिति भिन्न हो गई है। अब घरानों की आवश्यकता व्यक्ति के ज्ञान की परिधि तक ही सीमित है। प्रत्येक घराने की विशेषताओं को आत्मसात करके अपने संगीत में ढाल लेना ही एक लक्ष्य रह गया है। अतः अब घरानों की कट्टरता में शिथिलता आई है, क्योंकि आज संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। संगीत सम्मेलन, सभाएं, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विभिन्न प्रकार की रिकॉर्डिंग पद्धतियों के कारण संगीत जनमानस में व्याप्त हो गया है। यही कारण है कि आज किसी एक घराने की विशेष शैली का परंपरागत एवं कट्टरतापूर्वक अनुसरण नहीं हो रहा है। पृष्ठ संख्या 130। संगीत लोक रुचि पर आधारित होने के कारण उसमें सदा परिवर्तन होता आया है। आज का तालवाद्य वादक अपने प्रदर्शन में प्रत्येक घराने की सुंदर बातों को सम्मिलित करने का प्रयास करता दिखाई देता है, और यही उचित भी है। आज समय आ गया है कि घराना कलाकार घरानों की रूढ़िवादियों से ऊपर उठकर संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास करें। इसी में उसका और संगीत दोनों का कल्याण है। यह यथार्थ है कि एक समय में घरानों की प्रगति से संगीत में बहुत निखार आया था और संगीत को सुरक्षित रखने में उनका सराहनीय योगदान रहा है। कुछ रूढ़िवादी कलाकार घराने नष्ट होने पर विलाप करते हुए सुने जाते हैं, परंतु उचित तो यह है कि वे आज बदलती हुई परिस्थिति में उसको नया चोला पहना दें और एक मध्य मार्ग निकालें।